दीदी कैसी हैं आप? जय सानवी के गले लग जाता है। सानवी मुस्कुराकर उसे कसकर पकड़ती है। तुम तो कह रहे थे कि मैं अकेली आऊंगी। मुझे भी ऐसा ही लगा था, आर्यन धीमे से बोलता है। सानवी उसकी तरफ देखती है। जय थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैंने जानबूझकर आप दोनों को नहीं बताया था, मुझे आप दोनों के साथ ही रहना था। वो दोनों के आने से जय बेहद खुश था, उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। उस दिन आप दोनों का झगड़ा हुआ था ना, इसलिए आप दोनों बात नहीं कर रहे थे। जय अब रेस्टोरेंट वाली शाम की बात कर रहा था। जब सानवी और आर्यन एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे आपकी दोस्ती करानी चाहिए। उसकी बात सुनकर दोनों एक पल को परेशान से भी हुए और हल्का सा मुस्कुरा भी दिए। टीचर ने आवाज़ दी, प्लीज़ सभी बच्चे साथ साथ रहेंगे और उनके पेरेंट्स भी। जय ने तुरंत सानवी और आर्यन दोनों के हाथ पकड़ लिए। वो बीच में था, दोनों उसके दोनों तरफ। छोटे छोटे कदमों से उछलता हुआ वो आगे चल रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे दुनिया में इससे ज्यादा खुश वो कहीं नहीं हो सकता। सानवी और आर्यन उसके साथ कदम मिलाकर चल रहे थे। तीनों के हाथ एक लाइन में जुड़े हुए थे, बीच में जय और दोनों तरफ दो लोग जो कई दिनों से एक दूसरे से बात भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। पगडंडी संकरी थी, झाड़ियां रास्ते को छू रही थी, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। जय आगे खिंचता और पीछे मुड़कर कहता, दीदी मामू जल्दी आओ ना, वहां मंकी दिख रहा है। सानवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आ रहे हैं, भागो नहीं। इस आवाज में एक नरमी थी, वही जो आर्यन को बहुत दिनों से नहीं मिली थी। उसे सुनकर उसके दिल में हल्की सी हरकत हुई और उसी पल जैसे किसी ने उसके अंदर छुपा हुआ घाव छेड़ दिया हो। आर्यन की आंखों के सामने अचानक वो शाम घूम गई, वो मीटिंग, वो गलती, विक्रांत और जैसिका का उस पर हावी होना, कस्टडी का डर और सबसे ज्यादा सानवी का सब जानते हुए भी चुप रह जाना। कुछ सेकंड के लिए उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया, चलते हुए उसके कदम धीमे हो गए, जरा सी दूरी बन गई थी सानवी से। उसकी आंखों में उस पल वही गुस्सा भर आया, वही दर्द जैसे किसी ने पुराना जख्म फिर छू दिया हो। सानवी ने महसूस किया उसकी सांसों की लय बदल गई, उसका चेहरा सख्त हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस निगाहें झुका ली, मगर अगले ही पल जय की हंसी ने उस भारीपन को हल्का कर दिया। आर्यन ने खुद को झटके से संभाला और फिर जानबूझकर कदम वापस उनके साथ मिला दिए। चलते चलते रास्ते की ऊंचाई पर जय उछलता हुआ आगे निकला। सानवी का हाथ अनजाने में आर्यन के हाथ से टकरा गया, दोनों ठिठक गए। नजरें मिली और फिर एक पल में दोनों ने नजरें हटा ली, जैसे अपने दिल का राज छुपा रहे हों। मगर उस एक सेकंड में आर्यन के चेहरे की सख्ती हल्की पड़ गई थी, जैसे वो गुस्सा और दर्द थोड़ी देर को ठहर गया हो। कुछ देर बाद टाइगर सेक्शन पहुंचते ही जय भागने लगा। जय रुको, सानवी दौड़ी, लेकिन उसके पैर का कोना पत्थर से टकरा गया। वो आगे गिरने ही वाली थी कि आर्यन झट से आया और सानवी की कलाई थाम ली, उसकी पकड़ मजबूत थी। सानवी उसके बेहद करीब रुक गई, सांसें एक दूसरे को छू गईं। सानवी हल्के से बोली, थैंक यू। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें फेर ली, क्योंकि उसी करीब होने से फिर से वही कड़वी याद चुक गई थी। वो सब, विक्रांत, जैसिका, कस्टडी और सानवी का चुप रह जाना, उसका दिल पल भर को फिर कस गया, जैसे उसने खुद को वापस दीवार के पीछे धकेल दिया हो। लेकिन इसी बीच जय फिर शैतानी करने लगा। जय पिंजरे की जाली के बहुत करीब चला गया। सानवी घबरा गई, आर्यन भी भागकर पहुंचा। दोनों ने मिलकर जय को खींचा और इस खींचतान में फिर से सानवी का हाथ आर्यन की उंगलियों से छू गया, पहले हल्का फिर मजबूरी में थोड़ा कसकर, जैसे किस्मत ने उन्हें जबरदस्ती एक ही फ्रेम में खड़ा कर दिया हो। जय हंस पड़ा, ओहो आप दोनों एक साथ पकड़ रहे हो मुझे। सानवी मुस्कुराई, आर्यन ने भी सिर झुकाकर हंसी दबाई और उसी पल उसका चेहरा फिर नरम पड़ गया। अब तीनों साथ चल रहे थे, सन्नाटा भी था, मगर उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी गर्माहट थी। सानवी बोली, लगता है आज जय बहुत खुश है। आर्यन ने धीमे से कहा, शायद। सानवी चुप रही, मगर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, वही जो आर्यन ने कई दिनों बाद देखी थी। कभी कभी जब सानवी कुछ बोल देती या जय उसके साथ ज्यादा घुल जाता, तो एक झटके में आर्यन को सब याद आ जाता, वो गलती, वो कस्टडी का डर, विक्रांत और जैसिका का एकदम सिर पर मंडराना और सानवी का सब जानकर भी चुप रह जाना। उस क्षण उसका चेहरा फिर ठंडा पड़ जाता, नजरें कठोर हो जाती और एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती। मगर हर बार जय उसकी उंगली पकड़कर खींच लेता, सानवी एक हल्का सा सवाल पूछ देती या कोई बच्चे की आवाज उसे उस गुस्से से निकाल देती और वो फिर धीरे धीरे उनके साथ कदम मिलाकर चलने लगता। कृति आज रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जैसिका से बदला लेना। कुछ महीने पहले उसकी और जैसिका के बीच एक डील हुई थी। डील ये थी कि जैसिका डॉक्यूमेंट वाली गलती आर्यन और उसके परिवार तक नहीं पहुंचने देती और कृति उसके अबॉर्शन वाली बात को विक्रांत से छुपा कर रखेगी। लेकिन अब कृति ये डील तोड़ने वाली थी। उसे समझ आ चुका था कि अगर उसकी बहन सानवी की जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं जैसिका ही है।
इसीलिए पिछले कुछ दिनों से कृति अस्पताल के चक्कर लगा रही थी। जहां जहां उसे शक था उसने वहां जाकर रिकॉर्ड निकलवाए। उसने पैसे देकर स्टाफ से बात की और धीरे धीरे उसने जैसिका के अबॉर्शन की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड की कॉपियां और अस्पताल के सभी संबंधित कागजात इकट्ठे कर लिए। वो अब उसके हाथ में था। कृति ने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन फैसला किया, अब ये सच विक्रांत तक पहुंचेगा। अगर मेरी बहन की लाइफ बर्बाद हुई है तो जैसिका को भी उसके कर्मों का फल मिलेगा। इस बार मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगली सुबह आ चुकी थी, एक ऐसी सुबह जो शायद कई लोगों की जिंदगी में तूफान लेकर आने वाली थी। इंदर सुबह सुबह ही आर्यन के ऑफिस पहुंचा। वो बिना नॉक किए सीधे अंदर चला गया। आर्यन अपनी फाइलें देखते हुए बोला, आओ अंदर इंदर। आज उसका मूड ठीक लग रहा था लेकिन इंदर ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा, दोनों हाथ आर्यन की टेबल पर रखे और गहरी आवाज में बोला, मैं एक खबर देने आया हूँ। आर्यन ने भौं उठाते हुए पूछा, किस बारे में? इंदर सीधा खड़ा हुआ और संजीदगी से बोला, मेरे इस कंपनी में जो शेयर हैं मैं उनका इस्तेमाल खुद करना चाहता हूँ, समझते हो ना? अब से मैं अपने फैसले खुद करूंगा। आर्यन ने बिना ज्यादा भाव बदले कहा, अच्छी बात है, तुम्हें ऑफिस आते रहना चाहिए। इंदर ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगा? आर्यन ने कुर्सी से टिकते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, इसमें अजीब वाली कौन सी बात है? इंदर ने हल्का सा आगे झुकते हुए कहा, सोच लो आर्यन, मेरे और जैसिका के शेयर मिलाकर 50% हमारे पास है। अब सारे फैसले सिर्फ तुम अकेले नहीं कर सकते। आर्यन कुछ कह पाता उससे पहले दरवाजा नॉक हुआ। देव अंदर आया और बोला, सर, जिन्हें आपने बुलाया था वो आ चुके हैं। आर्यन ने सिर हिलाया, ठीक है, बुला लो उन्हें। देव ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, सर, वो आपको पार्किंग एरिया में बुला रहे हैं। चलो, आर्यन शांत स्वर में कहता हुआ देव के पीछे पीछे बाहर जाने लगा। इंदर ने पीछे से आवाज दी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया आर्यन। आर्यन ने दरवाजे पर रुककर अपनी आधी गर्दन घुमाई, एक ठंडी सख्त नजर इंदर पर डाली, फिर बिना कुछ बोले सीधे बाहर चला गया। इंदर वहीं खड़ा रह गया, उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। आर्यन और सानवी का पास रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ ही एक तरफ तो वो सानवी का रेस्टोरेंट बंद कर रहा था, दूसरी तरफ उसके साथ घूम रहा था। ये सब इंदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि आर्यन सानवी को डिस्टर्ब कर रहा था। असली बात तो ये थी, दोनों लड़के उसे परेशान नहीं कर सकते थे, दोनों ही उसे चाहते थे। बस इंदर हर बात बोल देता था जो उसके मन में होता था, वही आर्यन सिर्फ करने में यकीन करता था, वो नहीं, उसके फैसले बोलते थे।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें।